मेरी आस्था को मार दिया तूने। सुन ले, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। कान्हा जी तुझे कभी खुश नहीं रहने देंगे। और खबरदार, अगर तूने मेरी पोती के बारे में कुछ सोचने की भी कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ये कहते हुए नानी माँ पूरी ताकत से राजवीर पर झपट पड़ी। लेकिन तभी राजवीर ने झटके से आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि नानी माँ एक पल को रुक गई। वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बेहद ठंडी और खतरनाक आवाज में बोला, बस करो बुढ़िया, बंद कर अपनी बकवास, क्या बोले जा रही हो तुम? उसकी आंखों में सनक साफ दिख रही थी। और तेरी पोती प्रियंका नहीं है वो, अब वो मेरी बीवी है, समझी तुम? जानती भी हो क्या क्या किया है मैंने उसे पाने के लिए। अपनी पूरी दुनिया दांव पर लगा दी सिर्फ उसे अपनी जिंदगी बनाने के लिए, उसे अपनी दुनिया में लाने के लिए। उसने गुस्से से नानी माँ को झटका दिया। अब उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। नानी माँ दर्द के बावजूद सीधी खड़ी रहीं और उनकी आवाज और भी मजबूत हो गई। वो तुम्हारी बीवी नहीं है, तुमने उसे अगवा करके रखा हुआ है। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, पूरा माहौल एक पल के लिए जम गया। जो लोग अब तक आस्था की मौत का मातम मना रहे थे, उनके चेहरे अचानक हैरानी से भर गए। आंसुओं के बीच एक नई सच्चाई ने सबको झकझोर दिया था। राजवीर की आंखें सिकुड़ गई, वो नानी माँ को घूरने लगा और फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। कमाल है, उसकी हंसी पागलकन की हद पार कर चुकी थी। एक एक करके सारे राज बाहर आ रहे हैं, इसके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। वो धीरे धीरे नानी माँ के करीब आया, उसकी आवाज़ अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। पर चालू बुढ़िया, तुझे ये सब कैसे पता चला कि वो मेरी बीवी नहीं है? नानी माँ की आंखों में एक पल के लिए चमक उभरी, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा सच अपने अंदर छुपाए बैठी हों। वहीं सम्राट, जो अब तक सब कुछ शांत होकर देख रहा था, अचानक चौंक गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो तुरंत राजवीर की ओर मुड़ा और गंभीर भारी आवाज में बोला, गुरुजी, ये कौन सा सच आपका निकलकर बाहर आ रहा है? जिस औरत के लिए आपने हर तरह के पागलपन की हद पार कर दी, वो आपकी बीवी ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। सम्राट की आंखों में सवाल देखकर अब राजवीर घूर कर सम्राट को देखने लगा था और अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर बोला था, देखा तुमने, बस यही एक कारण है कि मैं तुम्हें अभी तक सर्वश्रेष्ठ नहीं कह पाया हूँ। सम्राट अरमान सिंघानिया यहाँ मौजूद है, क्या तुमने अरमान के मुंह से एक बार भी यह सवाल सुना? सुना तुमने? नहीं सुना। और इस सवाल का जवाब ये है, कोई औरत जब तुम्हें पसंद आ जाती है और तुम्हारी पसंदीदा औरत बन जाती है, तो उससे शादी हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो औरत तुम्हारे लिए तुम्हारी पूरी दुनिया बन जानी चाहिए, कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। राजवीर की आवाज़ धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, मानो वो अपने जुनून में पूरी तरह डूब चुका हो। तभी वो अचानक अरमान की ओर मुड़ा और बोला, अरमान, देखा तुमने, ये सम्राट मुझसे किस तरह के सवाल कर रहा है? क्या तुमने मुझसे कभी कोई सवाल किया? नहीं किया ना? लेकिन तभी अरमान ने लाल आंखों से सम्राट को घूरते हुए फिर राजवीर की ओर देखकर धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, नैना माथुर का सच क्या है गुरुजी? जैसे ही अरमान के मुंह से ये नाम निकला, राजवीर का चेहरा एकदम से हैरानी से भर गया। वो तुरंत उसकी ओर देखकर बोला, ये कैसी बातें कर रहा है अरमान? तूने भी सम्राट की तरह बेवकूफी कर दी? तू मेरा सर्वश्रेष्ठ चेला है ना, तो तू इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? और वैसे भी तुझे मेरी बीवी का पूरा नाम कैसे पता चला? और एक बात बता, नैना माथुर का सच जानकर तू क्या करेगा? तभी अरमान ने एक बार फिर अपनी बाहों में आस्था को कसकर थाम लिया और राजवीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं नैना माथुर का सच जानना चाहता हूँ गुरुजी। ये समझ लीजिए, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद मैं अपनी आस्था के साथ इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आहान, ध्रुव और बाकी सभी लोग तड़प उठे। अगले ही पल वे घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगे। उन्हें इस तरह टूटता हुआ देखकर अरमान ने सिर्फ एक नज़र उनकी ओर डाली, लेकिन कुछ कहा नहीं। वहीं अविनाश गुस्से से कांपते हुए अरमान को घूर कर बोला, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। एक तो मेरी बहन की जान ले ली, रोते हुए अविनाश आगे बोला, और ऊपर से अब नैना माथुर का सच जानना चाहता है। हाँ, अगर तुझे मरना ही है तो मर जा अरमान सिंघानिया, और वैसे भी अगर तुझे ये पागल राजवीर छोड़ देगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि कई सिक्योरिटी गार्ड्स पहले से ही राजवीर और सम्राट को काबू में लिए हुए थे। उसी बीच इशारे से टाइगर ने अरमान की ओर देखा। अरमान ने हल्के से अपनी आंखें उठाकर टाइगर को देखा और टाइगर समझ गया कि अभी अरमान नहीं चाहता कि सम्राट या राजवीर की जान जाए। लेकिन टाइगर के मन में सवालों का तूफान चल रहा था। आखिर किंग को हो क्या गया है? वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? यहाँ इस पागल ने किंग को इतना उकसाया कि उन्होंने हमारी क्वीन की जान ले ली, लेकिन फिर भी किंग यहाँ किसी और की कहानी जानने में क्यों लगे हुए हैं? आखिर चल क्या रहा है यहाँ?
ठीक उसी वक्त सजना ने सोचा कि उसे इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से निकल जाना चाहिए। अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। इसीलिए वो धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर उसे पकड़ लिया। अब वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। अबीर, अविनाश और बाकी किसी ने भी सम्राट या राजवीर को मारने की जल्दबाजी नहीं दिखाई, क्योंकि दोनों पहले ही काबू में थे। वहीं अबीर सिंह राठौर को कहीं ना कहीं ये सुनकर तसल्ली हुई कि अरमान सिंघानिया खुद ही अपनी जान लेना चाहता है, लेकिन उसके मन में भी एक सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर ये नैना माथुर का किस्सा अचानक कहां से आ गया? उसी दौरान नानी माँ ने चुपचाप अपनी नजरें उठाकर अरमान की ओर देखा। अरमान की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर उनके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। अगले ही पल उन्होंने आस्था की ओर देखा और कुछ सोचकर अचानक पूरी तरह शांत हो गईं। लेकिन तभी अरमान की बातें सुनने के बाद राजवीर जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक एकदम गंभीर होकर बोला, तो मरने से पहले भी मेरे चेले को अपने गुरु की लव स्टोरी जाननी है? वाकई तू ही है मेरा सर्वश्रेष्ठ चेला अरमान। फिर उसने सम्राट की ओर देखकर तंज कसते हुए कहा, देखा सम्राट, तूने एक बार भी मेरी कहानी जानने की कोशिश नहीं की, और ये मेरा चेला मेरी कहानी जानना चाहता है जिसे मैंने आज तक सिर्फ राज बनाकर रखा था। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से राजवीर को देखने लगे। वहीं आकाश और सुमित खुद को रोक नहीं पाए और गुस्से में अरमान से बोले, भाई ये क्या लगा रखा है तुमने? आखिर तुम्हें क्या जरूरत है इस पागल आदमी की कोई भी बात सुनने की? हमने इसकी एक भी बात नहीं सुननी, कुछ भी नहीं जानना हमें इससे। और वैसे भी इसकी बीवी नैना माथुर, वो इसकी बीवी थी या नहीं, इसे कैसे उठाकर लाया था, अगवा करके लाया था, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आकाश की आवाज अब और तेज हो गई, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस आदमी को खतरनाक मौत देनी है, बेहद खतरनाक मौत। अब जैसे ही सुमित ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, वो गुस्से में बोला था, तभी राजवीर ने तुरंत सुमित को देखकर कहा था, इसमें भी क्या जल्दी है राधिका के पति, ठहर जाओ, मेरे चेले ने मुझसे कुछ मांगा है, मुझे उसकी आखिरी इच्छा तो पूरी करने दो, और मैं बिना अपने चेले की आखिरी इच्छा पूरी किए उसे मरने भी नहीं दूंगा। फिलहाल ये सुनकर सुमित भी पीछे हटकर खड़ा हो गया था। वहीं दूसरी ओर सिंघानिया मेंशन में रश्मि एक बार फिर जाग गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी लौटकर नहीं आया था। रश्मि को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और उसने तुरंत ही सीमा जी से पूछा,
आंटी जी ये हो क्या रहा है, आखिर सभी लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए, सबके सब कहाँ रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है, आस्था नानी माँ और बाकी सब कहाँ हैं, हमसे मिलने क्यों नहीं आए? रश्मि को परेशान होते हुए देखकर सीमा जी ने उसे बड़ी ही मधुर वाणी में समझाने की कोशिश की, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है और वो लोग बहुत जल्दी वापस भी आ जाएंगे। लेकिन रश्मि इस वक्त पूरी तरह से हाइपर हो चुकी थी। वो बोली, नहीं हमें किसी से कुछ नहीं सुनना, अभी आप हमारी बात कराइए, अभी हम आकाश जी से बात करना चाहते हैं, आकाश जी हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं, उन्हें हमारे पास होना चाहिए था। कहीं ना कहीं सीमा जी के दिल और दिमाग में भी और रश्मि के मन में भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी उन्होंने प्रियंका को इशारा किया और खुद को थोड़ा संभालते हुए सीमा जी ने फैसला लिया कि अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है। उसी वक्त मनोज जी भी वहां आ गए। उन्होंने इशारे से सीमा जी को कह दिया कि वो रश्मि को सारा सच बता सकती हैं। अब देर न करते हुए सीमा जी ने बहुत ही सावधानी से पूरा सच रश्मि को बता दिया। ये सुनते ही रश्मि की आंखें आंसुओं से भर गईं। वो टूटती हुई आवाज में बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमें जाना होगा, अभी जाना होगा। तभी मनोज जी ने रश्मि को संभालते हुए कहा, बेटा तुम्हें इस वक्त अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना होगा, तुमने अभी एक मासूम बच्चे को जन्म दिया है और मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें वहां जाने दूं। लेकिन रश्मि पूरी तरह से बेचैन होकर बोली, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मामा जी, हमें वहां जाना है, हमें उनसे मिलना है, बात करनी है, आप फोन तो लगाइए। लेकिन किसी का भी फोन नहीं लग रहा था। मनोज जी पहले से ही कई बार कॉल करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। अब रश्मि को इस तरह तड़पते हुए देखकर मनोज जी खुद भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वहां जाना इतना जरूरी है तो मैं जाऊंगा, तुम यहीं घर पर रहो। लेकिन तभी प्रियंका मजबूती से बोली, पापा मैं भी आपके साथ चलूंगी, ये सारा बवाल मेरी वजह से हुआ है और अगर किसी की जान जाएगी तो सिर्फ मेरी जाएगी, किसी और की नहीं। प्रियंका की आवाज में दृढ़ता साफ झलक रही थी। ये सुनकर मनोज जी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा तुम चलो हमारे साथ। फिर उन्होंने सीमा जी की ओर देखा। सीमा जी ने उन्हें आश्वासन दिया, आप लोग जाइए, मैं यहाँ रश्मि का पूरा ख्याल रखूंगी, उसे कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर मनोज जी और प्रियंका वहां से निकलने लगे। इधर सीमा जी रश्मि को शांत करने लगी और बोली, तुम्हें बिल्कुल शांत रहना होगा, अगर तुमने जरा सी भी टेंशन ली तो इसका सीधा असर तुम्हारे बच्चे पर पड़ेगा, इसलिए खुद को संभालो। धीरे धीरे सीमा जी उसे कंफर्टेबल महसूस कराने लगी। वहीं दूसरी ओर मनोज जी और प्रियंका जल्दी जल्दी मल लोकेशन की ओर निकल पड़े, क्योंकि अब सच का सामना करना जरूरी हो चुका था। फिलहाल
अब जैसे ही प्रियंका और मनोज जी ने देखा कि बाहर चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा था, तो दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। मनोज जी को कुछ अलग सा अंदेशा होने लगा था। उन्होंने तुरंत प्रियंका की ओर देखकर कहा, बेटा, लोकेशन के हिसाब से हम यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ना तो यहाँ किसी फोन में नेटवर्क आ रहा है और ना ही यहाँ एक भी सिक्योरिटी गार्ड दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? प्रियंका ने तुरंत जवाब दिया, पिताजी, शायद आप भूल रहे हैं, अंदर अरमान सिंघानिया है, उसे किसी सिक्योरिटी गार्ड या फौज की जरूरत नहीं होती। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई मुसीबत में हो और उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। तभी मनोज जी थोड़ा गंभीर होकर बोले, बेटा, इसी वजह से तो हमें और ज्यादा सावधानी से अंदर जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग पहले से ही किसी मुसीबत में हो और हम भी अंदर जाकर फंस जाएं। मनोज जी की समझदारी भरी बात सुनकर प्रियंका कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन उसके अंदर बेचैनी साफ दिख रही थी। वो हर हाल में अंदर जाकर सच्चाई जानना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी के लिए और मुसीबत खड़ी हो। प्रियंका ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और बोली, हम यहाँ पुलिस को भी नहीं बुला सकते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अरमान सिंघानिया के मामलों में कभी पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती। ये सुनकर मनोज जी ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है बेटा, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, लेकिन हमें बहुत समझदारी से अंदर जाना होगा। एक काम करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये कहकर उन्होंने एक नज़र प्रियंका पर डाली। प्रियंका ने सिर हिलाकर हामी भरी, चलते हैं पिताजी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। ऐसी सोच के साथ दोनों धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगे और रास्ते में उन्हें दादाजी और अभिमान भी गाड़ी में बैठे हुए दिखाई दे गए थे। अब जैसे ही उन्होंने मनोज जी को देखा तो हैरान होकर पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे थे। तब मनोज जी ने सारी बात बता दी कि रश्मि ने किस तरीके से उन्हें यहाँ भेजा है। अब तो बेहतर यही होगा कि हम सब एक साथ ही अंदर चलें। काफी देर हो गई है बच्चों को अंदर गए हुए, अभी तक उनका भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिलहाल वो सब एक साथ अंदर की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, पूरा इलाका एकदम सुनसान पड़ा था। चारों तरफ बस सन्नाटा था और उस सन्नाटे में सिर्फ उनकी गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। माहौल इतना खामोश था कि हर कदम की आहट साफ सुनाई दे रही थी। प्रियंका अपनी सांसें थामे मनोज जी और साथ ही दादाजी और अभिमान जी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों मुख्य दरवाजे के अंदर पहुंचे, धड़ाम, पीछे का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। ये दृश्य देखकर प्रियंका डर से कांप उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो किसी ने उन्हें कैद कर लिया हो। उसी पल प्रियंका के मुंह से निकली हल्की सी आवाज राजवीर के कानों तक पहुंच गई। वहां दूसरी ओर राजवीर पहले से ही अरमान को घूर कर देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे किसी और की आहट का एहसास हुआ, उसने तुरंत अपना ध्यान हटाया। अगले ही पल उसने कुछ स्क्रीन एक्टिव की और तेजी से कुछ चेक करने लगा। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था प्रियंका और मनोज जी और दादाजी अभिमान अंदर आ चुके थे। ये देखते ही राजवीर के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। उसका चेहरा अचानक काला पड़ गया, आंखों में खतरनाक चमक आ गई और फिर वो जोर जोर से हंसने लगा। राजवीर के इस पागलपन भरे व्यवहार को देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू रखा और चुपचाप ये सब देखने लगा कि आखिर यहाँ होने क्या वाला है। आखिर क्या है नैना माथुर का सच, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और सुनते रहिए पॉकेट FM पर तेरे इश्क में।